अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
वालेकुम अस्सलाम। अब्बा की गाड़ी कहाँ है?
देर कर दी,
चले गए?
देख ही रहे के गए।
अच्छी बात है सारा साहिबा, बड़ी अच्छी बात है। अब्बा ने मेरी बात सुनना भी पसंद नहीं की, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? सारा साहिबा ने कुछ नहीं बताया तुमको? हाँ डैडी, क्या देख ही रहे हो, हमारे पास वक्त नहीं है। मम्मी डैडी रिश्ता मंजूर करवाने गए हैं, अभी बहुत काम है। सारा साहिबा की मदद के लिए आया हूं मैं। चेहरा घुमाओ, मेरी तरफ देखो। इन सारे दरख्तों पर बल्ब लगने हैं, सारे पर, लेकिन मेज कुर्सियां कहाँ हैं? शादी का कार्ड, बहुत काम करने हैं भाई, बहुत। सबको इत्तला देनी है। सारा साहिबा शादी कर रही है, वो भी कैसी शादी? तूले साहब कौन है? वो बेवकूफ लड़का।
भाई साहब,
क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं सारा।
भाई साहब,
चुप रहो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसी क्या बात हुई कि मम्मी डैडी मुझसे इतना नाराज हो गए?
अंदर चले भाई साहब।
चुप रहो, तुम इतनी खुदगर्ज हो चुकी हो, कुछ भी नहीं। अपनी ख्वाहिशों के आगे तुम्हारे लिए किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है।
उसकी क्या गलती?
तुम चुप रहो। हाँ वो भी तुम्हारी ही तरह है, सिर्फ 2-3 दिन की जान पहचान, और मम्मी डैडी को भेज दिया ताकि वो रिश्ता मंजूर करवाएं जाकर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, मजाक बना रखा है।
आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे।
तुम्हारे पास कहने के लिए है ही क्या? अगर तुम्हारे अक्ल होती तो कुछ करते ही। जा रही हो? हाँ जाओ, भागो, जाओ अंदर, घर के अंदर बैठ जाओ, और जब तक मम्मी डैडी वापस ना आए घर से ना निकलना।
भाई साहब मुझे बताने तो दें।
तुम्हारी बात से कोई फायदा नहीं।
लेकिन अब्बू ने फैसला कर लिया था, हम और सारा कुछ नहीं कर सकते थे।
अब्बा की जो तबीयत है उसके बावजूद तुम्हें उन्हें मशहद भेज दिया। ताज्जुब है अब्बा ने कैसे अपने आप को तुम्हारे उस लड़की की मर्जी पर छोड़ दिया। कल अब्बा के पीछे लगा हुआ था, मुझे देखते ही उसकी हालत खराब हो गई।
मैं भी पहले यही सोचता था।
नासरी साहब वहाँ गए थे कि डैडी से कहे मशहद न जाए।
हाँ पता है, उसकी इसी गुजारिश के साथ डैडी बौखला गए। ताज्जुब है सारा साहिबा, डॉक्टर साहिबा, आपको पता है डैडी किस काम का क्या मतलब?
डैडी को इसका मतलब मालूम है।
मैं बताता हूँ तुमको, सुनो।
तुम डैडी अमीर बैरूस में
हमेशा का हथकंडा।
डैडी को रोकने के लिए अब कोई नहीं बचा था, तुम्हें खुद भी ये बात मालूम है।
हाँ तुम्हारा हमेशा का यही हथकंडा रहा है, पहले अपनी बात डैडी से कहती हो। तुम उन्हें जानती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए हर काम करेंगे वो, फिर शर्मिंदा होती हो। नहीं अब्बा माफ करना, तुम डैडी कहती हो ना? नहीं डैडी कोई जरूरत नहीं।
पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तो पता है।
जी हाँ, हमेशा की तरह ये सब बहाने हैं।
मेरी प्रॉब्लम की भी कभी अहमियत रही है? कोई अहमियत नहीं है।
क्योंकि डैडी ने हमेशा तुम्हें रोका है, और तुम्हें भी पता है कि डैडी सही कहते हैं। तुम्हारे और डैडी के फैसलों से मेरा कोई मतलब नहीं।
तो तुम्हारा किस बात से ताल्लुक है? तुम अपनी मर्जी चलाने के अलावा भी कुछ सोचती हो? मेरे ख्याल में जरा डैडी की तबीयत का भी सोचती तो अच्छा होता। तुम्हें पता है इन हालात में तुमने डैडी के साथ क्या किया? हाँ
इससे पहले भी मैं ये सब सुन चुकी हूँ कि डैडी की जो तबीयत खराब हुई है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर वो परेशान है तो तुम्हारी हरकतों की वजह से है, तुम्हारी वजह से दुखी है।
मैं तो मैंने डैडी की ये हालत बनाई है? डैडी को तो इस हालत में घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहिए था, सिर्फ सोना चाहिए था, आराम, मुकम्मल आराम, समझ रही हो तुम? लेकिन तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि डैडी को हुआ क्या है।
सुनिए मजीद, आपको याद है जो पहली बार हम लोग सफर पर निकले थे?
हाँ, बड़ी पुरानी बात है।
उस वक्त अहमद मेरे पेट में था।
सारा के आने से 3-4 साल पहले की बात।
उसके बाद से हमेशा हम लोग बच्चों के साथ सफर पर निकले, कभी अकेले नहीं निकले थे।
लेकिन अब अकेले हैं मैं और तुम एक दूसरे के साथ, बच्चों के बगैर, बिल्कुल अकेले। सारा 1 साल की थी, याद है तुम्हें?
भला ये भी कोई भूलने की बात है? आपने उसी वक्त गाड़ी खरीदी थी।
हाँ याद है, ड्राइविंग अच्छी नहीं थी मेरी।
हाँ, बैक गियर से आप डरते थे। एक बार तो 100 किलोमीटर तक आप चले गए, फिर जाके कहीं मोड़ मिला।
हाँ वो गाड़ी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी।
बहाने न बनाइए, आपको मालूम नहीं था।
भाई गाड़ी ठीक नहीं थी।
हमने उस गाड़ी पर पूरा ईरान घूमा।
अच्छा ये बताओ कौन सा शेर गया था?
वही हमेशा वाला, इलाही नाज।
हाँ, ए खुदा ए दिल नवाज, आ दिल में रब का साज, हूँ दूर गम ये जागो दास, पहलू में आ जाए करार, दिल को नहीं मिलता सुकून, मैं तेरा मुजरिम चूके हूँ। फरुख तुम्हें याद है, सारा 1 साल की थी उस वक्त। अच्छा सारा कहाँ होगी इस वक्त?
जनाब ये अहमद तो सारा से जलता है, कुछ गलत भी नहीं है। आपका सारा हम वो गम सारा है भाई, जाहिर सी बात है घर में होगी और कहाँ।
क्या हुआ?
तुमने डैडी की दवा का पर्चा देखा है?
दवाओं का पर्चा?
हाँ वही जो डॉक्टर ने दिया था, डॉक्टर शम्स।
नहीं उसके क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें, क्या हुआ है?
तुमने भी सुना अहमद किस तरह बात कर रहा था?
वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, दुआ करो आए ही मत वो इधर।
डैडी की बीमारी के बारे में मुझे लगता है कुछ छुपा रहा है वो।
क्या छुपाएगा, अब्बू के दिल के ऑपरेशन हुआ है, सबको मालूम है। क्या करना चाहती हो?
डॉक्टर शम्स की क्लिनिक को फोन कर रही हूँ। हेलो, सलाम अलैकुम, सुतुदा हूँ मैं जी, मुझे डॉक्टर शम्स से बात करनी थी ज़रा। अस्पताल? ठीक है मैं क्लिनिक आ जाऊँगी, एक ज़रूरी काम था उनसे खुद से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, खुदा हाफिज़। मैं जा रही हूँ क्लिनिक।
देखो सारा, आज मेरी फौजी ट्रेनिंग का पहला दिन है, तुम्हें भी पता है कि क्या हो रहा है। देखो कितनी भीड़ यहां पे लगी है, सब हमें रुखसत करने के लिए आए।
तुम्हारे ख्याल में हमारा रवैया ठीक नहीं था? सारा के बारे में कह रहा हूं, ये अहमद की जलन खुद ही उसे नुकसान पहुंचा रही है उसे।
आप भी तो हमेशा सारा पर ही ज्यादा तवज्जो देते थे, अब भी ऐसा ही है, लेकिन अहमद को
पता है, तुम्हें पता है, यकीन नहीं करोगी, लेकिन अब तो मुझे उसकी सूरत से भी नफरत होने लगी है। सुबह घर से जल्दी निकल आया था ताकि उसकी सूरत ना देखूं। आजकल पता नहीं क्यों उसकी हरकत जब्बार साहब की तरह लगने लगी है मुझे।
खुदा की पनाह, आप कुछ ज्यादा रवि कर रहे हैं।
सारा से ज्यादा मुझे अहमद की फिक्र है।
इंशाल्लाह जब सारा की शादी हो जाएगी।
पता है, मुझे यही डर रहा है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मुझे सब्र ना हुआ और वो चीजें कह दूं जो मुझे नहीं कहने चाहिए, सारा के बारे में, घर के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में।
आपके ख्याल में बताने का वक्त कब है?
जब अमीर के घर वालों से मिलकर बात हो जाए तब।
हाँ, जब सारा की शादी हो जाए तब।
हाँ, अहमद का रवैया भी बदल जाएगा।
वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। मैंने कहा था कि वो हवाई जहाज से नहीं जा सकते। वो जरूर हवाई जहाज से गए होंगे।
नहीं, गाड़ी से गए हैं।
यानी वो खुद गाड़ी चलाकर मशहद तक गए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, उसे डॉक्टर की परवाह है ना अपनी सेहत की।
डॉक्टर साहब, क्या हुआ है?
तुम क्या कहना चाहती हो?
डैडी की तबीयत के बारे में। वो आपके पास आए थे ना डॉक्टर साहब?
मुझे अफसोस है मोहतरमा, मैं घर के फर्द फर्द को तो सारी तफसीलात नहीं बता सकता, वो भी सतूते के बारे में जो इस तरह के काम करता है।
मैडम, अब आप जाएं।
माफ कीजिएगा, एक फोन कर सकती हूँ?
क्यों नहीं, जरूर।
हेलो,
मुझे अहमद से बात करनी है।
अहमद घर नहीं है।
कहाँ है?
क्या हुआ, आजकल तुम लोग सब अहमद ही को ढूंढते रहते हो?
कोई खास बात नहीं।
सचमुच तुम भाई बहन एक ही जैसे हो। उससे भी पूछो तो कहता है कि कुछ नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काम धंधा खत्म हो चुका है फिर भी कहता है कि कुछ नहीं।
उससे जरा मिलना था।
बस यही?
हाँ बस यही।
अच्छी बात है, मुझे इत्मीनान हो गया। उसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहती थी।
जी हाँ, सिर्फ मिलना था मुझे। आप बता सकती हैं कहाँ है?
अगर ये कहूँ कि मुझे पता नहीं तो यकीन करोगी? वैसे आपको तो बेहतर ही पता होना चाहिए कि कारखाने को तो अब्बा हुजूर ने बंद ही करवा दिया है।
हाँ सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे बताएंगी वो कहाँ पे? एक बहुत जरूरी काम है।
शायद डैडी के शोरूम में हो।
क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है।
मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं पहचानता।
कारखाना बंद कर दिया, मजदूरों को घर भेज दिया।
सबको पता है?
हाँ सबको पता चल गया।
मेरे कहने का मतलब था तुम्हारे अब्बा की तबीयत के बारे में।
नहीं, डैडी ने कहा है किसी से न बताऊं।
ये तो ठीक नहीं है।
क्या?
यही कि सिर्फ तुम्हें पता हो।
क्या मतलब?
मतलब ये है कि अगर बाद में कुछ हो गया तो सबको तुम्हें से शिकायत होगी कि कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं।
गाड़ी बिल्कुल नहीं है, जर्रा बराबर भी इसमें खराबी नहीं आई है। सिर्फ ये दरवाज़ा है, इसको ज़रा सा रंगना होगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो 50,000 में तय करवा दूँगा।
कुछ ज़्यादा जमी नहीं।
कहें तो चाबी ले आऊँ, चक्कर लगा के देख लें।
जनाब, ये गाड़ी तो मैं खुद खरीदना चाहता था, बस थोड़े से पैसे कम पड़ गए, वरना मैं सही साहब को बेचने ही ना देता।
तुम जाओ अंदर से चाबी लेके आओ।
जी अच्छा सही साहब।
ये गाड़ी मेरी नज़र में कुछ पुरानी है।
अब नई गाड़ी थोड़ी है ये।
अस्सलाम वालेकुम।
नहीं पहचाना मुझे? कैसे पहचानेंगे, इतने दिन से जो देखा नहीं।
आप सही साहब हैं?
जी, उस दिन आप जब डैडी के साथ आई थी तो मैंने आपको देखा। اگر احمد نہ بتاتا تو میں آپ کو بھی نہیں پہچانتا.
جی ہاں.
سریا بتا رہی تھی آپ ڈاکٹر ہو گئی ہیں.
جی ہاں.
بھائی مبارک ہو.
جی شکریہ. معاف کیجیے گا, احمد یہیں پہ ہے؟
ہاں اندر ہی ہے.
اس کو ذرا باہر بلا دیں گے؟
آپ ہی اندر چلی جائیے, یہاں تو اچھا نہیں.
نہیں, اسے یہیں بلا سکتے ہیں آپ, اگر بلا دیں تو بہتر ہوگا.
غلام جا کے اندر سے احمد کو بلا.
جی صحیح صاحب. جی
آپ یہاں آئیں. سارا آپ کا انتظار کر رہی ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
گھر پہ فون کیا تھا تو سریا بھابھی نے کہا کہ آپ یہاں پہ ہوں گے شاید.
ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا؟
وہ ڈیڈی کے بارے میں پوچھنا تھا.
ڈیڈی کیا ہوا؟
میرے خیال میں آپ کو کچھ معلوم ہے.
مجھے کیا معلوم؟
آپ آج صبح کچھ باتیں کر رہے تھے.
دیکھو سارا, نہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ یہ جگہ مناسب ہے. میرے خیال میں جو جاننا چاہیے اس کا تمہیں پتا ہے.
مجھے ڈیڈی کی فکر ہے.
فکر؟ بھائی واہ بھائی واہ. ہاں ہاں مجھے پتا ہے, میری صبح کی باتوں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے اور اب اس وقت شرمندگی ظاہر کرنے آئی ہو, لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے.
کیا فائدہ نہیں ہے؟
ڈیڈی کے لیے تمہاری ہمدردی کا.
کیوں, کیا ہوا؟
یعنی تمہیں نہیں پتا, وہ اس وقت سینکڑوں کلومیٹر گھر سے دور گئے ہیں تاکہ تمہارے لیے. اب بہت ہو چکا سارا, ذرا میری بھی فکر کرو.
میں آج اسپتال گئی تھی ڈاکٹر شمس سے ملنے.
تو پھر
آپ تو مجھ سے پہلے ان سے مل چکے ہیں.
کوئی خاص بات نہیں
احمد, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اگر کوئی بات ہے تو مجھے بھی بتائیں.
خدا کے لیے میرے سامنے ایسی صورت نہ بناؤ. اتنے سارے واقعات کے بعد اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟
احمد مجھے حقیقت جاننی ہے.
کیسی حقیقت؟ اگر جاننا ہی تھا تو پہلے جاننا چاہیے تھا تاکہ اسے روک سکو. تمہیں اس صورتحال میں اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹنا چاہیے.
کیا ہے احمد, ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو, ہے نا؟
ہاں. جاننا چاہتی ہو؟ ڈیڈی بیمار ہے, سمجھ رہی ہو, وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہیں گے, ڈاکٹر نے کہا ہے. اب کیا کرو گی, اپنی شادی ٹال دو گی؟ ہاں
بچوں کی یاد آ رہی ہے, سارا کو آگ بہت پسند ہے.
ارے بھائی پھر وہی بچوں کی بات.
ٹھیک ہے اب تمہاری باری.
جب تک سارا اور احمد کی باتیں رہیں گی میری باری نہیں آئے گی.
معاف کرنا, اب مشرق تک تمہاری خدمت میں ہوں. میں چاہتا ہوں تم اپنی بات کرو.
میں کیا کہوں؟
اپنی بات کرو, تم گھر میں تو خاموش رہتی ہو.
میری تو بس ایک آرزو ہے.
آرزو؟
بہروز فوج میں جا رہا ہے, سارا کی بھی شادی ہو جائے گی, ہم لوگ اکیلے ہو جائیں گے. میرا دل چاہتا ہے کہ پورا ایران گھوموں. پہلے اہواز چلیں گے میری بہن کے گھر.
انشاءاللہ. اور کہاں جانے کا دل چاہتا ہے؟
کتنا اچھا ہو ہم ساتھ چلیں, اس کے بعد شیراز چلیں گے بھائی کے گھر.
ٹھیک ہے, ایک مہینے بہن کے یہاں اور پھر اس کے بعد ایک مہینے بھائی کے یہاں.
کتنا اچھا ہم ساتھ چلیں, اس وقت آپ کے بھی کام ختم ہو جائیں گے.
کام؟
وعدہ کرتے ہیں.
وعدہ.
لگتا ہے میری باتیں سن ہی نہیں رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں.
نہیں ایسا نہیں ہے.
میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے قدم بہ قدم. Thank you.
اچھا فروخ صاحبہ، اب سامان اٹھائیے، اب چلنا چاہیے، 8-9 بجے تک مشہد پہنچنا ہے ورنہ ہوٹل میں کمرہ نہیں ملے گا۔
اچھا خدا حافظ کل تک۔
تو کیا بھول گئے کل جمعہ ہے؟
بھول گیا تھا، سنیچر تک بھائی۔ سارا، سارا، السلام علیکم بھائی۔
وعلیکم السلام، تم کہاں ہو؟ پھر وہی دوست ہے باب؟
ہاں، صبح سے گیا تھا کارڈ لینے کے لیے، سنیچر کو ڈیوٹی کی جگہ پتا چلی۔ سارا کہاں ہے؟
اپنے کمرے میں، طبیعت ٹھیک نہیں اس کی۔
کیا ہوا ہے؟
کچھ نہیں، تھوڑا سر میں درد ہے۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا تاکہ سارا اکیلی نہ رہے گھر میں۔
سارا کو بخار ہے بھائی۔
بخار ہے؟ فریج میں دوائیں ہیں، اسے خود پتا ہے کیا لینا ہے۔
بھائی بتایا نہیں آپ نے کیا ہوا ہے۔
کچھ خاص بات نہیں، تم کیوں پریشان ہو؟
مطلب آپ سارا سے ملنے جو آئے تھے؟
نہیں، وہ میرے پاس آئی تھی، اچانک طبیعت خراب ہوگی، میں گھر لے کے آ گیا۔ کوئی کام تو نہیں؟
ایک گزارش کر سکتا ہوں؟
کیا ہوا؟
جو بات بھی ہے، ابو کے بارے میں، سارا کے بارے میں، امیر کے بارے میں۔
تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اس قسم کی باتیں ابو کے واپسی کے بعد کریں۔
کیا بات ہے، سارا کی فکر ہے؟ تم سوچ رہے ہو کہ ممی ڈیڈی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میں آیا اور سارا سے جھگڑا کیا میں نے؟ تم بھی اسی طرح ہو۔
پتا نہیں، شاید آپ صحیح کہہ رہے ہوں۔
بھائی واہ بھائی، چلو اس گھر میں کوئی تو ہے جو میری طرف داری کرتا ہے۔ دیکھیں بہرو صاحب، میں آپ کی طرح اپنے حق کو کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔
آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟
تمہارے بارے میں، یہی کہ اپنی مرضی نہیں چلا سکے اور اب اپنی عمر کے 2 قیمتی برسوں کو فوج میں گزارنے پر مجبور ہو۔ لیکن میری صورتحال مختلف ہے بہرو صاحب، میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو اپنے حق کو یوں ہی ضائع کرنے دے۔
میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔
دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا تمہارے بھی۔ خدا حافظ سارا کے بھائی۔
خدا حافظ۔
نہیں نہیں، رہنے دو بھائی،
دیکھو برتن مجھے دھلنے دو۔
ارے دیکھو شرمندہ نہ،
برتن نہیں دھلنے دیا تو پھر میں نہیں آؤں تمہارے۔
خدا کے لیے تم روز آیا کرو تاکہ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ پتہ ہے میری بیوی کو تمہاری بڑی فکر رہتی، اگر میں ایک رات تمہاری بات نہ کروں تو بس مجھے غصہ ہو جاتی، کہتی بھائی جاؤ امیر اکیلا ہے، مل کے آؤ۔ پتہ ہے وہ ابھی اصل میں پردیسی ہے اور اسے گھر کی یاد آتی ہے، تمہارے بارے میں بھی یہی سوچتی ہے۔
آرش، امیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟
میں کیا کروں، خود ہی زبردستی ہماری مدد کرنے لگا۔ میں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسی اس کی مرضی، برتن دھو لے۔
ارے نہیں کوئی بات نہیں،
فکر نہ کرے، بدلے چکا دیں گے۔
لیکن مجھے تو آثار نہیں مل رہا۔
آرش ٹیلی فون۔
جی مہرو صاحب، السلام علیکم۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ ہاں ایک منٹ، امیر تم سے کام ہے، دیکھو کیا کہہ رہے۔
ہیلو، وعلیکم السلام بہروز۔ अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज।
क्या हुआ?
सारा की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा।
हम भी आए साथ में?
नहीं नहीं, कहाँ, उसे अपने अब्बू की तबीयत की फिक्र है, हमें फोन करना।
खातिरदारी का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
क्या हमको फोन करना, चलो तैयार हो चलें।
तुम कहाँ जाना चाहते हो, उन दोनों को अकेले छोड़ दो।
ओहो
आरज साहब, अब जाइए और अपने दोस्त का काम पूरा करिए।
जी बेहतर, ठीक है। दोनों ही पढ़ो।